I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.
HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
आइए मैं राना सफी आपको ले चलती हूँ इतिहास की अनदेखी गलियों में मेरे पॉडकास्ट अनजाने रास्ते के जरिए। आइए आज एक और सफर पे चलते हैं। मैंने अपने अनजाने रास्ते का सफर शुरू किया था बुरहानपुर से, जहाँ पे मलिका मुमताज महल को दफनाया गया था और जहाँ से उनका जनाजा आगरा लाया गया था और ताजमहल में दफन किया गया था। मैं अनजाने रास्ते का सफर आज समाप्त करती हूँ उसी सफर की अंतिम कड़ी से, ताजमहल से। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने पहले ही एपिसोड में अर्ज किया था, 16 जून 1631 में मलिका मुमताज महल इस जहान से जाती रहीं। पहले उनको बुरहानपुर में दफन किया गया था और फिर उसी साल के दिसंबर में उनके जनाजे को आगरा लाया गया और आगरे में ये तय हुआ कि उनके लिए एक आलीशान मकबरा बनेगा। जो उनके इंतकाल का क्रोनोग्राम निकाला गया था वो बेबदल खान ने निकाला था और उसका मतलब था जाए मुमताज महल जन्नत आबाद, मे द अबोड ऑफ मुमताज महल बी पैराडाइज। तो फिर जन्नत तो बनानी ही थी या जन्नत नुमा एक मकबरा तो बनाना ही था। जैसे जो उनके कोर्ट पोएट थे, शोहरा थे शाहजहान बादशाह के, अबू तालिब कलीम कशानी, उन्होंने लिखा था अपॉन हर ग्रेव मे इट बी एल्यूमेंट अंटिल द डे ऑफ रिसरेक्शन, द किंग ऑफ किंग्स constructed such an edifice that since destiny drew the plan of creation, it has not seen such an exalted building. ये translation फारसी से एबा कॉक का है। उसके बाद एक आलीशान मकबरा बनाया गया, लेकिन इस आलीशान मकबरे को, शायद आपको पता नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ही बड़ा है और ऊंचा है, और इसके जो फाउंडेशन है यानी कि जो बुनियाद है वो कुओं के ऊपर, इसका जो बुनियाद है इसमें नीचे में कुएं हैं, कुएं में लकड़ी के पाइल्स हैं, उसके ऊपर फिर ऑगर्ड पाइल्स हैं, और इसकी वजह से जो था वो इतना भारी स्ट्रक्चर सपोर्ट कर पाया। तो इसके लिए फिर किसी भी दरिया के पास होना बहुत ज़रूरी था। दरिया जैसे आपको मालूम है कि अपनी जगह से सरक जाती है। ये जहाँ के ऊपर लोकेशन इंतखाब हुआ वो एक बेंड है जमुना में, और वहाँ से जो उनके आर्किटेक्ट से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से कभी ये दरिया खिसक नहीं सकती। वो जगह जो इंतखाब हुई, राजा मानसिंह की हवेली थी वहाँ पर, और राजा मानसिंह तो जैसे आपको मालूम है कि उनसे रिश्तेदारी थी। राजा मानसिंह की फूफी जो थी वो जहांगीर बादशाह की वालदा थी, यानी कि शाहजहां बादशाह की दादी, और उस वक़्त 1631 में राजा जय सिंह जो थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, उसके मालिक थे। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने उस जगह को देना चाहा एक गिफ्ट की तरह, लेकिन शाहजहां ने इस बात से इनकार किया और उसके एवज में उन्होंने 4 हवेलियां दी। अच्छा, मुगलों के ज़माने में रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था, और ये जो सारा प्रोसेस है ताजमहल के बनने का, और ताजमहल तो हम आज कहते हैं, उस ज़माने में तो इसको रोज़ाए मुनव्वरा कहते थे, रोज़ाए मुनव्वरा के बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड है उस ज़माने की किताबों में, और जो दस्तावेज़ हैं, जो फरमान हैं, इनको एक किताब है द इल्यूमेंट टूम बाय बेगली एंड देसाई, उसमें ट्रांसलेशन भी मिल जाते हैं हमको। जो फारसी में उस जमाने में किताबें लिखी गई थी, बादशाह नामा जो कज़विनी ने लिखी थी, बादशाह नामा जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, मोहम्मद वारिस ने लिखी थी, और शाहजहां नामा जो मोहम्मद साले कम्बो ने लिखा था। इन सब में हमको सारी डिटेल्स मिलती हैं कि ताजमहल किस तरह से बनाया गया। अब मैं ताजमहल इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि रोज़े मुनव्वरा के नाम से तो आजकल कोई जानता ही नहीं है उसको। अच्छा, ये जो फरमान है जिसमें शाहजहां बादशाह जो हैं वो चार हवेलियां दे रहे हैं राजा जयसिंह को, उनकी इस एक हवेली के अवज में वो जयपुर सिटी पैलेस के कापड़द्वारा कलेक्शन में मौजूद है। मैं आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ, इसका ट्रांसलेशन जो बेगली एंड देसाई ने किया है ताजमहल द एल्यूमेंट टूम में। अच्छा, इसमें हर जगह जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हवेली। ये फरमान जो है वो कापड़द्वारा कलेक्शन जयपुर सिटी पैलेस में जैसे मैंने अर्ज किया मौजूद है, और इसमें लिखा है, बी इट नोन थ्रू दिस ग्लोरियस फरमान मार्क्ड बाय हैप्पीनेस व्हिच हैज रिसीव्ड द ऑनर ऑफ इशुएंस एंड द डिग्निटी ऑफ प्रोक्लेमेशन दैट द मैंशंस हवेली डिटेल्ड इन द एंडोर्समेंट टुगेदर विद द डिपेंडेंसीज व्हिच बिलोंग टू द ऑगस्ट क्राउन प्रॉपर्टी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दैट प्राइड ऑफ पियर्स and vassal of the monarch of Islam, Raja Jai Singh, and I hereby handed over and transferred to his ownership in exchange of the Haveli formerly belonging to Raja Man Singh, which that pride of the grandees willingly and voluntarily donated for the mausoleum of that queen of the ladies of the world, Mumtaz Mahal Begum. इस मकबरे को बनाने के लिए एक चहेती बीवी के लिए, उस बीवी के लिए जिसके लिए बादशाह बहुत रोए थे, इतना रोए थे कि उनके चश्मे लग गए थे, एक जो थीम चुना गया कि जिसके ऊपर बनना था वो था हश्त बहिश्त, यानी कि जन्नत बात तो बनना ही था, तो वो जन्नत का पूरे प्लान बनाया गया। उसमें बाग थे, वाटर चैनल्स थे, और शाहजहां को क्योंकि सिमेट्री का बहुत शौक था इसलिए हर चीज़ जो थी वो एक बहुत ही सिमेट्रिकल तरीके से बनाई गई थी। अगर एक तरफ मकबरे की मस्जिद था तो दूसरी तरफ मेहमान खाना बनाया गया बिल्कुल उसी तर्ज का, और चार बाग प्लान के ऊपर ये बनाया गया था। जो इसका डिज़ाइन था उसको तरह मुसम्मन बगदादी कहते हैं, यानी कि ऑक्टोगोनल प्लान था ये, और इसके लिए एक मास्टर मेसन बगदाद से आया था। अमले साल ही में मोहम्मद साली कम्बो कहते हैं कि जनवरी 1632 में इसकी तामीर शुरू हुई और 20,000 लोगों ने 20 साल तक इसको ऊपर काम किया। अच्छा, इसको बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया ताज बीबी का रोज़ा, क्योंकि मुमताज़ नाम था उनका, और उसी से फिर शायद नाम ताज पड़ गया। मैं बचपन से यहाँ जा रही हूँ लेकिन मेरी अभी तक उसके लिए जो एक चाहत है, जो एक उस जाके वहाँ पे एक अजीब सा जो जादू का एहसास होता है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों। अब जन्नत में क्या होता है, अब आप जन्नत के बारे में जब सोचते हैं तो फूलों के बारे में सोचते हैं, खूबसूरती के बारे में सोचते हैं, तो शाहजहां ने यहाँ पर फूल बना दिए। पर चीनकारी के, इनलेवर के, पेटिया ड्यूरा के इतने खूबसूरत फूल बने हुए हैं चारों तरफ एक आई लेवल के ऊपर कि आप देख के चकाचौंध रह जाएं। उनको रेड सैंडस्टोन में भी काफ किया गया है, उनको मार्बल में भी बनाया गया है, और उनको प्रेशियस स्टोन से भी बनाया गया है। अच्छा, जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो हमको उसका गुंबद दिखता है। ये गुंबद जो था वो इस्माइल खान एफिंदी ने बनाया था, जो डबल डोम बनाने के उस्ताद थे, और ये टर्की से आए थे। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने बाद में लाल किला बनाया, और उस्ताद हामिद। इसका सुपरविजन किया था मकरमत खान ने, जिन्होंने बाद में लाल किले का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। और ये जो आप अफवाहें सुनते हैं ना कि हाथ कटवाए गए और ये सब हुआ, ये सब सिर्फ अफवाह है, इन पर आप यकीन ना करें। जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उन्होंने ही बाद में लाल किला और शाहजहानाबाद की बहुत बिल्डिंग्स बनाई, और उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद खान के कूचे भी मौजूद हैं दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद में। हाँ, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो जिन्होंने पत्थर लगाया होगा, जो परचीनकारी जिन्होंने की होगी, उनके नाम हमें नहीं मालूम, हालांकि पत्थरों पर मेसन्स मार्क मौजूद है। और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे साहिर लुधियानवी की ये नज़म ज़रूर याद आती है, मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शा उसे शक्ल जमील, ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے کندیل، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ یہاں کے اوپر جو جوڑے ہوتے ہیں، جو کپلز ہوتے ہیں، وہ ضرور آتے ہیں اور اس کو ایک بہت ہی رومانٹک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جیسے آپ داخل ہوں گے دروازے سے، جو روضے کا دروازہ ہے، اس کے اوپر جو کیلیگرافی ہے، اور جو پورے اندر کیلیگرافی کی گئی ہوئی ہے، وہ عبدالحق نے کی تھی، عبدالحق شیرازی، جن کو ٹائٹل دیا گیا تھا، لقب دیا گیا تھا امانت خان کا، اور وہی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے اپنے کام پہ سائن کیا ہوا ہے۔ جو اندر سینوٹاف چیمبر ہے، اس میں ایک جگہ ورسز جہاں لکھے ہوئے ہیں، جہاں کیلیگرافی ہے، وہاں پہ امانت خان کا سگنیچر بھی ہے۔ جس پہ پھول پتی بنائے گئے ہیں، جو پرچین کاری ہوئی ہے، جو آپ ان لے وقت دیکھتے ہیں، اس کے لیے جو پتھر تھے وہ یمن سے، عربیا سے، پرشیا سے، رشیا سے، جو فیروزے تھے وہ اپر تبت سے، ڈائمنڈز سینٹرل ایشیا سے، اونکس جو تھے وہ ڈیکن سے، اور گارنٹس جو تھے وہ بنڈیل گھنٹ سے منگائے گئے تھے۔ ایک انگریز خاتون تھیں جن کے شوہر یہاں پہ پوسٹڈ تھے ہندوستان میں، انہوں نے اندر گنے ہیں کہ جو ایک ایک پھول تھا، اس ایک پھول میں 72 پتیاں تھیں، 72 پیسز تھے۔ ایک ایک پیس کو لگانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، آپ جب چاہیں تو یہ ضرور سوچئے گا۔ اور کارتک پورنما کی رات پہ میں گئی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جو جیسے کہ گرو رویندر ناتھ ٹیگور نے اس کے لیے کہا ہے کہ وقت کے گال پہ ایک آنسو، آپ دیکھ کے منتر مکت ہو جاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، کون بنا گیا ہے، اور یہ کیا چیز ہے۔ سچ میں جیسے کہ شاہجہان کے جو کورٹ ہسٹورین تھے عبدالحامد لاہوری، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو عمارتیں ہیں نا، وہ با زبان بے زبانی ہم سے بات کرتی ہیں، یعنی کہ میوٹ ایلوکوینس، بنا زبان کے ہی ہم سے، بنا کچھ کہے ہی ہم سے کتنا کچھ کہہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا @htsmartcast پر، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے۔ اگر آپ کو اس پوڈ کاسٹ پر اتہاس سے جڑی کوئی اور کہانی سننی ہو تو آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے @IamRana، انسٹاگرام پہ @RanaSafi۔ اور ایسے اور دلچسپ پوڈ کاسٹ سننے کے لیے لاگ آن ٹو www.htsmartcast.com۔
دس واز این HT اسمارٹ کاسٹ اوریجنل۔
I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.